الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم سورہ النساء قرآن مجید کی چوتھی سورہ ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کے لیے کچھ بنیادی چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے پہلی آیت میں ایک نہایت شاندار اور گہری تمہید باندھی ہے اس کے بعد آگے اس بنیاد پر جو احکام سامنے آنے تھے ان کو پیش فرمایا ہے یہ جو سورہ ہے یہ مدنی ہے اپنے زمانے کے اعتبار سے اور پیچھے دو سورتیں ہیں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران اس میں دونوں سورتوں کا ایک حصہ تھا کہ اہل کتاب کو باتیں سکھائی گئیں ان کو بتایا گیا کہ تمہیں اب اس رسول پر ایمان لانا ہے اگر اس رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا معاملہ کافروں جیسا ہوگا اور سورتوں کے جو دوسرے حصے ہیں دونوں سورتوں میں وہ مسلمانوں کو کچھ تعلیمات دی گئی ہیں اب اس سورہ میں ساری کی ساری سورہ میں مسلمانوں کو تعلیمات دی گئی ہیں البتہ کہیں کہیں ان کے اوپر بھی بات ہوتی رہے گی تو یا ایھا الناس اے لوگو اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا ہے اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیں اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہو بل ارحام اور رحمی رشتوں کے بارے میں احتیاط کرو ان اللہ کان علیکم رقیبا بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے یہ بظاہر بہت سادہ سی باتیں ہیں لیکن تمام جو دینی ذمہ داریاں ہیں وہ اس میں بیان ہو گئی ہیں اور ان کی بنیادیں بیان ہو گئی ہیں یعنی صرف یہ نہیں کہ دین کی ذمہ داری کیا ہے وہ بیان ہو گئی بلکہ اس کی بنیادیں بیان ہو گئی ہیں تو آغاز یہاں سے کیا ہے اتقوا ربکم الذی خلقکم اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں سورہ الفاتحہ جب پڑھائی تھی اس وقت بھی سورہ البقرہ میں بھی دو ایک مقامات پہ ایسا ہی آل عمران میں بھی کہ خدا کو خدا ہونے کا حق کیوں حاصل ہے اور مجھے اور آپ کو کیوں حاصل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو خدا ہونے کا حق کیوں حاصل ہے رب ہونے کا اور مجھے اور آپ کو کیوں حاصل نہیں ہے فرشتوں کو کیوں نہیں ہے رسولوں کو کیوں نہیں ہے وہ صرف ایک وجہ سے وہ تخلیق کرنا ہے جس کو یہاں اللہ ذی خلقکم کے لفظ سے بیان کیا ہے صرف وہی ہستی رب ہو سکتی ہے جو پیدا کرتی ہے اور کسی کو حق حاصل نہیں ہے یہ مقدمہ اتنا بڑا ہے کہ آج کا جو الحاد ہے وہ بھی اسی بات پر کھڑا ہے کہ تخلیق نہیں ہوئی جیسے ہی تخلیق کو مان لیں گے خدا کو ماننا پڑے گا رب کو ماننا پڑے گا تو وہ اس لیے سیدھا انکار کرتے ہیں کہ کائنات تخلیق نہیں ہوئی ہے وہ کریشن کا انکار کرتے ہیں تو یہ اتنی واضح حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں کیونکہ میں نے تم لوگوں کو پیدا کیا وعلیکم السلام جس طرح ایک مصور اپنی تصویر بناتا ہے تو وہ اس کا مالک ہوتا ہے چاہے تو اسے پسند کرے اور اپنی دیوار پر لگا لے چاہے تو بیچ دے چاہے تو پھاڑ دے چاہے تو سردی لگنے پر آگ جلا کر سیک لے اس کو پورے حق حاصل ہے ٹھیک یہی حق خالق کائنات کو اپنی مخلوقات پر حاصل ہے تو اس لیے یہ سادہ سا جملہ ہے لیکن اس کے اندر یہ حقیقت مخفی ہے कि इस कायनात का अगर कोई रब है तो वो उसका खालिक हो सकता है। इसी बुनियाद पर मैं ये बात भी कहा करता हूँ कि इस्लाम मेरे और आपके ख्याली खुदा का तारुफ नहीं कराता। वो ये नहीं कहता कि मेरे वाला खुदा मान लो, इब्राहिम वाला खुदा मान लो, मूसा वाला खुदा मान लो, ये जुमले भी आते हैं, लेकिन वो ये इस खुदा की दावत नहीं देते। असल में इस्लाम कुरान मजीद उस खुदा की दावत देता है जिसने इस कायनात को तख्लीक किया, हकीकी खुदा, उसका कोई भी नाम रख लें, हकीकी खुदा की तरफ दावत देता है। ये तो अरबों ने अल्लाह का नाम रखा हुआ था, खुदा का नाम अल्लाह रखा हुआ था, तो इस्लाम में हर जगह हम अल्लाह ही कहते हैं, लेकिन हकीकत में हम किसको खुदा मानते हैं जो इस पूरी कायनात का, मेरा और आपका सबका खालिक है। ये हकीकत है जो इस आयत में बयान की गई। तो फरमाया कि उस रब से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया। तो पैदा करने की वजह से अल्लाह ताला रब बन गए। इसको एक दूसरे पहलू से समझिए कि बहुत सारी आयतों में अल्लाह ताला पूछता, बताओ जिनको तुम खुदा मानते उन्होंने क्या तख्लीक किया, अरूनी माजा खलक, इन्होंने क्या पैदा कर दिया तुम इनको खुदा बना के बैठ गए, जरा बताओ। तो खुदा बनेगा ही वही जो तख्लीक करेगा। तो कायनात अगर खुदा की मखलूक है तो फिर इसका कोई रब है, और अगर ये किसी की मखलूक नहीं है तो फिर इसका कोई रब नहीं है। अगर ये किसी की मखलूक नहीं है, ये कायनात मैं और आप, तो फिर बिला शुबा इसका कोई रब नहीं है। लेकिन ये अगर मखलूक है तो इसका फिर रब, इसका खालिक, इसका रब है। तो कुरान मजीद इसी दावे के साथ खड़ा है, और ये सच्चा दावा है, इस कायनात का एक खालिक है और वही रब है। मेरी बात को समझ लीजिए, एक और मिसाल से देख लीजिए। बाज़ात हमें तमसीलात देनी पड़ती हैं बात को समझाने के लिए, वो अल्लाह ताला की बात नहीं है। मेरे माँ बाप क्यों बने हैं? सिर्फ पैदा करने की वजह से, और कुछ नहीं किया उन्होंने, तो वो क्या बन गए? मेरे माँ बाप। कोई और बुज़ुर्ग, इवन ये कि मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी भी मेरे माँ बाप नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया। तो जो मुझे जन्म देंगे, कुरान ने इसको भी बयान किया है, हम जाके आगे देखेंगे कि अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में कहा है कि उनके बापों के नाम से पुकारो। ये नहीं हो सकता कि तुम कहो कि बेटा औलाद तो इसकी है, नाम इनका रख देते हैं, ये नहीं हो सकता। तो जो हकीकत यहाँ पर है कि जो कायनात का खालिक है उसी को रब मानना है, और जो मेरे माँ बाप हैं वही मेरे माँ बाप हैं, और कोई नहीं हो सकता। ये हकीकत है, ये इसको समझना चाहिए कि दरअसल मेरा और खुदा का ताल्लुक पैदा किस वजह से हुआ है, कि उसने मुझे बना दिया है, बस हकीकी ताल्लुक मेरा और खुदा का यही है, इस वजह से वो हमारा रब है। रब के मानी मैं बता चुका हूँ सूरह फातिहा पढ़ाते हुए, कि रब के एक मानी मालिक के हैं, एक मानी खुदा के हैं, और एक मानी पालने वाले के हैं। तो हम इन तीनों एतबार से खुदा के साथ ताल्लुक रखते हैं। मालिक के एतबार से हम उसके गुलाम हैं, मालिक के एतबार से हम उसके गुलाम हैं, खुदा के एतबार से हम उसके बंदे हैं, वो हमारा खुदा है, हम उसके बंदे हैं, और पालने वाले के लिहाज से हम उसके नमक खार हैं, उसका रिज़्क खाते हैं, उसके दिए को खाते हैं, उसके दिए को पीते हैं, उसके दिए को पहनते हैं, उसके दिए के अंदर रहते हैं। तो ये उसका हमारे साथ तीन ताल्लुक हो गए। अब मालिक का काम क्या है? वो बाज़पुरस करेगा, सजा दे सकता है, काम पे लगा सकता है। तो खुदा ताला को भी यह हक हासिल है कि हमें मारे, पीटे, गुस्सा निकाले, मोहब्बत जाहिर करे, काम पे लगाए, ये करना पड़ेगा कि वो हमारा मालिक है, वो खुदा है, तो हमें उसकी तकदीस करनी पड़ेगी, उसकी तस्बीह करनी पड़ेगी, उसको मुकद्दस मानना पड़ेगा, उसके आगे सर झुकाना पड़ेगा, उसके पाँव में सर रखना पड़ेगा, वो खुदा है। अगर ये हकीकत है तो फिर ऐसा करना पड़ेगा। वो पालने वाला है तो उसका शुक्र करना पड़ेगा, उसके साथ वफादारी करनी पड़ेगी। तो ये तीनों रिश्ते खुदा के साथ हमारे लफ्ज़ रब से अदा होते हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला ने जब हमसे अहद लिया तो उस वक्त ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा खालिक हूँ, ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा इलाह हूँ, ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा रहमान और रहीम हूँ, नहीं, सीधा कहा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो हकीकी खुदा के साथ हमारा ताल्लुक लफ्ज़ रब से अदा होता है, और रब होने का हक उसको इस वजह से कि उसने हमें बनाया। तो पहला जुमला हमारे अंदर ये तालीम करता है कि हम उस खुदा को मानने का कहा जा रहा है, उस खुदा का तकवा इख्तियार करने को कहा जा रहा है जिसने मुझे आपको पैदा किया। या अय्युहन नास उत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगो उस रब से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया है। आगे फरमाया मिन नफ्सिन वाहिदा, एक ही जान से। हकीकत में ये उम्र मुतशाबिहात में से है, लेकिन दौरे जदीद में मैं सिर्फ अपना एक फ़हम सा बता रहा हूँ, हरगिज़ ये कुरान की बात नहीं है। मेरा फ़हम अलग है, कुरान की बात सिर्फ इतनी है कि उसने हम सबको नफ्स वाहिदा से पैदा किया। आदम से लेकर क़यामत तक जो इंसान पैदा होने हैं, सब के सब नफ्स वाहिदा की औलाद है, दो की नहीं, नफ्स वाहिदा की औलाद है। पहला जुमला है खलककुम मिन नफ्सिन वाहिदा, तुम्हें मैंने नफ्स वाहिदा से पैदा किया है, फिर उसी नफ्स वाहिदा से जोड़ा बनाया था उसका जो नफ्स वाहिदा था, फिर इन दोनों से तमाम मर्द औरत दुनिया में फैलाया। अब इसको समझ लीजिए, नफ्स वाहिदा क्या है हमें मालूम नहीं है, लेकिन कुरान मजीद से ये इस आयत से और दीगर आयतों से, उसमें आप देख सकते हैं सूरह आराफ की 189 आयत है और सूरह ज़ुमर की 39 है, सूरह रूम की 20 और 21 है, जिसमें यह मज़मून बयान हुआ है। तो इसमें अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें नफ्स वाहिदा से, तुम सबको नफ्स वाहिदा से पैदा किया। तो मैं ये बता रहा था कि ये अमूर मुतशाबियात में से, हमें इनकी हकीकत मालूम नहीं, लेकिन आज जो कुछ हमारे पास इल्म है उसकी रोशनी में मैं कुछ अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह ताला ने यह बयान किया है सूरह मोमिनून में, सूरह हज में, कि मैंने इंसानों को कैसे पैदा किया। अल्लाह ताला कहते हैं मैंने मिट्टी के अंदर से उसका कोई मादा कशीद किया, सुलाला कुरान के अल्फाज हैं, सुलाला ते मिन तीन, मिट्टी का सुलाला अल्लाह ताला ने तैयार किया। सुलाला का मतलब है कि कोई उसमें से चीज़ एक्सट्रैक्ट की, कोई निचोड़ उसमें से निकाला, आजकल की ज़ुबान में समझ लीजिए कि कुछ ऐसे केमिकल्स अलग कर लिए जिससे इंसान या मखलूकात बन सकती थी, ठीक। फिर उसको अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने नुतफ़ा में तब्दील किया, पानी की एक बूंद में, जिससे आज भी हम पैदा होते हैं। उसने फिर मुख्तलिफ मराहिल से गुज़र कर इंसान की शक्ल इख्तियार की। ये जो पहला पानी का नुतफ़ा जिसको अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये तकसीम होकर ग्रो करता है, बड़ा बनता है, यानी हमारा और आपका आगाज़ भी सबका एक ही सेल से हुआ था, जो रहम मादर में ठहर जाता है, फिर वो तकसीम होते होते पूरा इंसान बन जाता, बच्चा छोटा सा, ठीक। तो ठीक ऐसे ही मिट्टी के अंदर अल्लाह ताला ने काम किया। अब हमें ये मालूम है दौरे जदीद में अलूम की रोशनी में, हम कह सकते हैं कि सेल इस तरह का पहला सेल है। अब ये तकसीम होने के लिए दरमियान से ऐसे करता है और फिर दो बन जाते हैं और जुड़े रहते हैं, फिर दो चार में तकसीम हो जाते हैं, चार आठ में, आठ 16 में, इस तरह तकसीम होते चले जाते हैं। ये जो प्रोसेस है इसमें बाज़ औक़ात डिटैच हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब अलग होते हैं तो जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं, एक इससे एक इससे। गालिबन यही काम, गालिबन मैं अपनी फहम बता रहा हूँ, कुरान में ऐसी चीज़ नहीं है, गालिबन इसी तरह से आदम और हव्वा पैदा की। अब देखिए दोनों एक दूसरे की पसली से पैदा हो रहे हैं, जो तौरात में बात कही गई है वो यही थी कि दोनों एक दूसरे की। तो ऐसे जब एक पहला नफ्स वाहिदा बना, उसने तकसीम का अमल शुरू हुआ और अलग हो गए, एक आदम बन गए, एक हवा बन गई, तो फिर तमाम इंसान इन्हीं से पैदा हुए। तब हम इस सारे के सारे आदम हवा समेत इस नफ्स वाहिदा की औलाद है। अल्लाह ताला ने सिर्फ एक सेल पैदा किया था और उससे फिर तमाम बनी नौ आदम बना दिए। तो इस आयत में ये दूसरी बड़ी हकीकत बताई गई है कि मैं और आप सारे के सारे एक ही नफ्स की औलाद है, दो की नहीं, ठीक है, एक रब की मखलूक, एक नफ्स वाहिदा की औलाद। एक वहदत इलाह का तसव्वुर देता है और एक वहदत आदम का, कि मैं और आप सारे बराबर हैं। अब इसमें तीसरी बड़ी हकीकत जो है वो भी देखिए क्या खूबी से बयान की गई है कि उन उस नफ्से वायदा से दो बनाए और दो बनाकर तमाम इंसान उन्हीं की औलाद है। अब ये जो दो बने हैं वो कौन हैं? एक आदम है, एक हव्वा है, एक मर्द है, एक औरत है। इन दोनों से तमाम इंसान बने हैं। मेरे और आप सब के अंदर एक माँ का खून दौड़ रहा है और एक बाप का। दुनिया का कोई आदमी सवाए हज़रत ईसा के, दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं है जो खालिसतन किसी औरत की औलाद हो, उसमें मर्द का खून ना दौड़ता हो। लेकिन हज़रत ईसा में भी अपने नाना का खून दौड़ता था, अपने नानी का खून दौड़ता था। लेकिन कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ औरत का खून दौड़ता, और कोई इंसान ऐसा नहीं जिसमें सिर्फ मर्द का खून दौड़ता। हर एक में, मेरे आप सब समेत, आदम को छोड़ दीजिए, हालांकि वो भी उसी नफ्से वाहिदा से बने थे, लेकिन वहाँ से लेकर आज तक और क़यामत तक जितने लोग पैदा होने हैं, हर एक में आधा हिस्सा उसकी माँ का है, आधा हिस्सा उसके बाप का है। तो अगर कोई इंसान ऐसा होता कि सिर्फ औरत की औलाद हो, और कोई इंसान ऐसे होते कि सिर्फ मर्द की औलाद हो, तो हो सकता है इनमें कोई दर्जे का फ़र्क होता, चलो जी ये मर्दों की औलाद है, ये औरतों की औलाद है। लेकिन हम सारे के सारे, हर शख्स एक मर्द और एक औरत की औलाद है। मेरी रगों में मेरी माँ का खून भी दौड़ता है, मेरे बाप का खून भी दौड़ता है। तो मर्द की औलाद भी हूँ, औरत की औलाद भी हूँ। तो इसी तरह मेरी बहन के अंदर भी मेरे माँ और बाप दोनों का खून दौड़ता है। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं, इस एतबार से भी हम बराबर हैं। अब तीन एतबार से इंसान बराबर है। इस आयत, एक आयत के अंदर देखिए कितनी हकीकतें बयान की गई। सब के सब एक खुदा की मखलूक, अम्मा हव्वा भी खुदा की मखलूक, आदम भी खुदा की मखलूक, मैं भी खुदा की मखलूक, मेरी बीवी भी खुदा की मखलूक, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, तब फ़र्क होता कि औरतों का खुदा कोई और होता, मर्दों का खुदा कोई और होता, तो फ़र्क हो सकता था। अब कोई फ़र्क नहीं, हम सब एक ही खुदा की मखलूक हैं। मैं एक जुमला बोला करता हूँ जिसे हम पीर भाई का रस बोलते हैं, कि दो जो दो आदमी जिनका एक ही पीर हो, कहते हैं पीर भाई। हम खुदा भाई हैं, हम सबका खुदा एक है। दूसरी बराबरी ये बताई कि सब के सब नफ्से वाहिदा से बने हैं, सब के सब नफ्से वाहिदा से बने हैं। और तीसरी बराबरी ये बताई कि सब की रगों में एक मर्द और एक औरत का खून दौड़ता है, बराबर हैं सारे। तो वहदत आदम बहुत ज़्यादा बयान कर दिया अल्लाह तआला, यानी ऐसा लगता है कि जैसे मुबालगा सा हो गया हो कि किस पहलू से पकड़ोगे। अगर खुदा फ़र्क होता, फ़र्क हो सकता था। अगर नफ्से वायदा नहीं, वो किसी और नफ्स की औलाद होते, वो किसी और नफ्स के, चलो जी ये अफजल नफ्स था, ये अफजल नफ्स नहीं था, तो फ़र्क हो सकता था। या सिर्फ मर्द की औलाद है, सिर्फ औरत की औलाद है, तब फ़र्क हो सकता था। यहाँ तीनों में बराबर है सारे, कोई फ़र्क नहीं है। सब खुद एक ही खुदा की मखलूक, सब नफ्से वाहिदा से पैदा किए गए, सब के अंदर एक माँ और एक बाप का खून दौड़ता है, आधा मर्द आधा औरत का खून। अब ये पूरी कायनात में हमारे दो रिश्ते हो गए। अब अगली हकीकत देखिए, ये तमहीद बड़ी ज़बरदस्त है, यानी इतनी मुख्तसर और इतनी जामे तमहीद आपको कहीं मिल जाए मुझे ला दीजिए। अगली जो बात बताई वो ये कि दुनिया में जो हमारे दो हिस्से हो गए, एक हमारा खुदा के साथ रिश्ता हो गया, एक लोगों के साथ रिश्ता हो गया। खुदा की मखलूक बन गए, वो तीन रब के लफ्ज़ की वजह से तीन रिश्ते खुदा के साथ, कि वो हमारा मालिक है, वो हमारा खुदा है, वो हमारा पालने वाला है। तो हमारा रिश्ता उसका उलट बनेगा, हम वो मालिक है तो हम ममलूक हैं, ग़ुलाम हैं, वो खुदा है तो हम बंदे हैं, वो पालने वाला है तो हम नमकखार हैं, ठीक है। ये रिश्ता हमारा खुदा के साथ बन गया, एक रिश्ता ये है जिसके तीन शेड्स हैं। और दूसरा रिश्ता इंसानों के साथ बन गया। अमेरिका में किसी बहुत दूर दराज गाँव में पैदा होने वाला और इंडोनेशिया में दूर दराज गाँव में पैदा होने वाला दोनों आपस में भाई हैं। ये सोच सकते हैं आप, इतनी बड़ी तमहीद है ये, यानी इंसानियत को बिल्कुल वहाँ ले गए अल्लाह ताला, जहाँ ज़ाहिर है कि हकीकत है, वो कोई अल्लाह ताला कहानी नहीं सुना रहे हैं, वो हकीकत बता रहे हैं कि बिल क्लिंटन और हमारे मोदी साहब और इमरान खान और नवाज शरीफ ये आपस में भाई हैं। वहाँ कोई खातून है तो वो सब रिश्ते में एक दूसरे के साथ आदम हव्वा के हवाले से जुड़े हुए हैं, नफ्स वाहिदा के हवाले से जुड़े हुए हैं और खुदा के बंदे होने के हवाले से जुड़े हुए हैं। सब के सब खुदा के बंदे, सब के सब आदम हव्वा की औलाद, सब के सब नफ्स वाहिदा की औलाद। तो अब दो रिश्ते वजूद में आ गए। तो दोनों रिश्तों के बारे में अगला जुमला बताएगा कि तुम्हें एहतियात करनी है। देखिए कि किस तरह गुथा हुआ कलाम है। फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, और मैं बीच में एक जुमला छोड़ रहा हूँ, वल अरहाम, और रहमी रिश्तों के बारे में डरो। कमाल है। यानी आप देखिए कि वत्तकुल्लाह वल अरहाम, अब तुमने एहतियात करनी है, परहेजगारी इख्तियार करनी है अल्लाह के बारे में और रहमी रिश्तों के बारे में। हमारी दीनी ज़ुबान में, फ़िकी ज़ुबान में कह लीजिए, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद की बुनियाद फराहम कर दी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने थोड़े लफ्ज़ों में इतना कुछ कहा जा सकता। अभी मैं नाकिस आदमी हूँ, अगर कोई बहुत साहिब बसीरत आदमी हो तो इसके अंदर से और भी मोती निकाल के ला सकता है। तो वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, तो अल्लाह से डरो, अल्लाह के बारे में परहेजगारी इख्तियार करो और रहम के बारे में। एक ने हकूकुल्लाह की बुनियाद रख दी है, एक ने हकूकुल इबाद की बुनियाद रख दी है। ये आप समझ नहीं सकते, यानी दीन की सारी असासात यहाँ पड़ी हुई, सारी असासात। ये आयत मुझे पलट पलट के कहती है ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तस, अब बीच में जो जुमला मैं छोड़ रहा हूँ समझाने के लिए कि दो चीज़ें इकट्ठी अल्लाह ने की हैं, अल्लज़ी तसअलूना बिही का मतलब है कि वो अल्लाह जिसका तुम वास्ता देते हो मदद लेने के लिए, खुदा के वास्ते ये काम कर दो, अल्लाह के बंदे हो ये कर दो। ऐसा ही हम रहमी रिश्तों का भी हवाला देते हैं, वो तुम्हारे भाई हो, भाई के ऐसे ये तवक्को करनी चाहिए, भाई को ऐसा करना चाहिए। तो ये दो ही रिश्ते हैं जिनकी बुनियाद पे हम मदद मांगते हैं। आजकल की दुनिया क्या कर रही है, इंसानियत, देखो जी इंसान है, इंसान है, इंसान है, वो यही बात है सब कि तुम इंसान हो, एक रिश्ते में बंधे हुए हो तो एक दूसरे का साथ दो, कत्लो गारत क्यों करते हो। तो हम अल्लाह के हवाले से मदद मांगते हैं और रहमी रिश्तों के हवाले से मदद मांगते हैं, इन्हीं दोनों के बारे में एहतियात करनी है। आगे फरमाया कि इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अब इन दोनों चीज़ों का तकवा ख्याल नहीं, ख़राब नहीं करना, इन दोनों चीज़ों में बड़ी एहतियात से रहना है, वरना मैं निगरान हूँ, सजा दूंगा। अब रहम के हवाले से कोई हरकत नहीं होनी चाहिए और अल्लाह के हवाले से कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलत हरकत की अल्लाह के हवाले से सज़ा मिलेगी, क्योंकि इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, और अगर रहमी रिश्तों के बारे में तुमने कोई ख़राब हरकत की तो तब भी सजा मिलेगी। तुम असल में आदम के रिश्ते को तोड़ बैठे हुए, आदम से जो रिश्ता कायम हुआ है, आदम हव्वा से, और जो खुदा की तख्लीक होने की वजह से रिश्ता कायम, उसको भी तोड़ बैठे हुए, तो ये तोड़ने नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ आप समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला सजाएँ क्यों देते हैं, दोज़ख क्यों कायम की है। यानी ये अगर आप इस पर गौर करें तो पूरी पूरी किताबें 10-20 लिखी जा सकती हैं सिर्फ इस एक आयत के ऊपर। बहुत बड़ी आयत है, बहुत बड़ी आयत है। और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने अपनी इंडिपेंडेंट तालीमात का आगाज़ इस तमहीद से किया है। पीछे जो दो सूरतें थी वो अहले किताब के साथ एक हुज्जत और दलील और उसको बयान कर रही थी, अब तालीमात इंसानों मुसलमानों के लिए शुरू हुई हैं तो इसका आगाज़ यहाँ से किया है। नहायत शानदार आगाज़ है और मुझे लगता है कि तौरात और इंजील वाले भी इससे वाकिफ हैं। तो मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये जितनी कीमती आयत है इसको ज़ेहन नशीन रखना चाहिए, इससे सारे ताल्लुकात, इससे सारे हकूक पैदा होते हैं, इसी से सारी समझदारी पैदा होती है, इसी से वो बसीरत पैदा होती है, जिसके बाद नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि किसी काले को गोरे पर, किसी अजमी को, किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं। और एक रवायत में आपके अल्फाज हैं कि जब तुम पर मुनक्के के सर वाला काली काला हबशी भी हुक्मरान बना दिया जाए, वो भी यहीं से फूटी हुई है, कि उसे नफरत कैसे कर सकते हो? उसका भी खालिक अल्लाह है, वो भी आदम व हव्वा की औलाद है, वो भी नफ्से वाहिदा से पैदा हुआ है। तो तुम जब उससे नफरत करोगे तो रहमी रिश्तों के बारे में तुम बेतौकी भी करोगे। तो लेकिन बदकिस्मती यह है कि इतनी शानदार तालीमात वाली उम्मत अब नफरत का सबक सिखाती है और लड़ाई झगड़े का पैगाम देती है, मारने का पैगाम देती है। हमें पूरी तवज्जो के साथ खुदा की इस तालीम को जहन नशीन करना है और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी का डिज़ाइन करना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब तमहीद मैंने जो मेरी बसात थी उसके मुताबिक थोड़ी बहुत वाजे कर दी, उम्मीद है बात पहुंच गई होगी। आगे इस शानदार तमहीद के बाद इस्लामी मुआशरे के सबसे कमज़ोर तरीन फ़र्द को उठाया है, वो यतीम बच्चा। तसव्वुर कर सकते हैं कहाँ इतनी बड़ी तमहीद, ऐसा लगता है कायनात पूरी समेट दी है और फिर सबसे कमज़ोर फ़र्द को उठाया है। वआतुल यतामा मवाला, यतीमों को उनका माल दे दो, उनका माल छीनो नहीं उनसे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ यतीम से बढ़कर ज़्यादा हकदार हो सकती है, इतना ऊंचा कर दिया उसको, यतीम के केस को इतना ऊंचा कर दिया है कि इतनी बड़ी तमहीद के फौरन बाद जो चीज़ आ रही है वो यतीम है। तसव्वुर नहीं आता कि ये क्या अहमियत है। कि ज़ाहिर है कि जब यतीम बच्चा, आप देखिए वो मेरा रहमी रिश्तेदार है, पीछे जो बयान किया है, आदम व हव्वा की औलाद है, नफ्से वाहिदा की औलाद है, मेरे खुदा की मखलूक है और अल्लाह ताला रकीब है, निगरान है। इसके बाद जो हुक्म आया वातुल यतामा मवाला, यतीमों को उनका माल उनके हवाले कर दो। तुम उनका माल खा नहीं सकते हो, हड़प नहीं कर सकते हो, जो उनका माल है उनको दे दो। ये अब यतीमों की अहमियत इतनी ज़्यादा कर दी है। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि हमसाए के साथ मुझे हमसाए की इतनी तालीम दी गई है, लगता है कि वो वरासत में हिस्सेदार बना दिए जाएंगे। वो असल में यही है, अरहाम मेरा हमसाया कौन है? आदम व हव्वा की औलाद। फतेह मक्का के बाद आपने जो खुतबा हुज्जतुल वदा दिया है वो इसी चीज़ को उठा के एक दूसरा रंग देता है। अहमियत वही रहती है लेकिन उसका रंग दूसरा है। आपने साहबा से पूछा कि यह कौन सा महीना है, साहबा ने कहा हज का महीना है। आपने फरमाया ये कौन सा शहर है, लोगों ने कहा कि मक्का का शहर। आपने पूछा ये कौन सा दिन है, लोगों ने कहा ये हज का दिन है। तो आपने फरमाया जो इस शहर की, जो इस दिन की और जो इस महीने का तकद्दस है, वही तमाम इंसानों के जान माल और आबरू का तकद्दस। जब कोई मुझे गाली देगा मैं आपको गाली दूंगा, तो गोया हमने मक्का को नौज़बिल्ला गाली दी। जब मैं आपका माल बटोरूंगा आप मेरा माल बटोरेंगे, तो गोया हमने खाना काबा का गुलाब फाड़ा है। और जब किसी की आबरू पे हम हमलावर होंगे, तो गोया हमने खाना काबा की, मक्का मुअज़्ज़मा की तोहीन की, इसके बराबर कर दिया। ठीक है, यही वो यहाँ से फूटी हुई बात है। अब यतीम को भी इतना ऊंचा कर दिया अल्लाह ताला ने। वातुल यतामा अमवालहुम, यतीमों को उनका माल अदा कर दो, उनके हवाले कर दो। वला ततबद्दलुल खबीस बित्तैयब, और उनके अच्छे माल को साथ अपना घटिया माल तब्दील ना करो। वला ताकलू अमवालहुम इला अमवालिकुम, और ना उनके माल अपने माल में शामिल करके खा लेना। इन्नहु काना हूबन कबीरा, इस तमहीद की रोशनी में बता रहा हूँ कि ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। आपने खुदा का भी ख्याल नहीं किया और अरहाम का भी ख्याल नहीं किया। इसको कहते हैं गुनाह कबीरा, कि आप सबसे कमजोर फर्द के ऊपर हाथ साफ कर रहे हैं। ठीक है, तो वातुल यतामा वालहुम वला तबतबल। अब ये देखिए, जो हमारे दौर में इस्लाम के ऊपर आता है कि इस्लाम अखलाक का दीन नहीं है, तो जिस दीन में तालीमात, मुआशरती तालीमात की बुनियाद इस खूबसूरत आयत पर हो, वो अखलाक का दीन क्यों नहीं हो सकता? सारे का सारा दीन अखलाक पे खड़ा है, सारे का सारा दीन। अल्लाह ताला ने शिर्क को भी जुल्म अजीम कहा है। जुल्म अखलाकी मसला है या नहीं है? तो शिर्क भी अल्लाह का हक मारना है। तो पूरे का पूरा दीन, पहले अकीदे से लेकर के अल्लाह एक है, ये अखलाकी हिस्सा है, और एंड तक हमने रास्ते से कांटा उठाना है, ये भी अखलाक है। तो सारे का सारा दीन अखलाक है और उसकी असास इस आयत में कायम है। तो अब यतीमों के बारे में हुक्म दिया गया कि इनको तुम उनका माल हवाले कर दो, और उनका घटिया माल, अपना घटिया माल उनके अच्छे माल से तब्दील करके ना खा लो। कि मिसाल के तौर पर उसकी भी एक चारपाई थी, आपकी भी एक चारपाई थी, आपकी चारपाई पुरानी थी, घसी पिटी थी, आपने उसकी चारपाई की जगह रख दी, उसकी चारपाई खुद इस्तेमाल कर ली। उसके पास भी दो बकरियां थीं, आपके पास भी दो बकरियां थीं, आप अपनी कमज़ोर बकरियां मरियल सी उसके खाते में डाल दी, उसकी बकरियां अपने पास रख ली। ये काम नहीं करना, ये हुबन कबीरा है। और फिर फरमाया कि उनका माल अपने माल में मिला कर ना खा लो। मिसाल के तौर पर, अच्छा जी, उस 100 दिनार उसके हैं, तो मैं अपनी दुकान पे सौदा डाल लेता हूँ और उसका कारोबार भी चलता रहेगा, मेरा भी चलता रहेगा। तो इस तरीके से माल खाने का बहाना ना बनाओ। इसकी इजाज़त आगे दी है कि अगर अदल के साथ तुम उनका माल अपने माल में लगा लो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ खाने के मना किया। वाला ताकलू अमवालहुम इला अमवालिकुम, उनका माल ना खाओ अपने माल में मिलाकर, ये तुमने नहीं खाना। दो ही किस्में हैं किसी को यतीम बच्चे का माल खाने का, एक ये कि उसका माल आपस में तब्दील कर लें, दूसरा ये कि उसके माल को अपने माल में मिक्स करके गड़बड़ करके खा पी लें। तो उसको फरमा दिया कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, वो बन कबीरा। कबीरा गुनाह जो है उनके बारे में समझ लीजिए, मैं अगरचे कई मौक़ों पर बात वाजे कर चुका हूँ कि कबीरा गुनाह आपकी नेकियों को खा जाते हैं। सारे गुनाह नेकियों को खाते हैं और सारी नेकियाँ गुनाहों को खाती हैं, एक दूसरे को खाने का काम करते रहते हैं। और जो कबीरा गुनाह होते हैं वो सारी नेकियों को खा सकते हैं, ये समझ लेना चाहिए। उनमें यतीम का माल शामिल है, उसमें वरासत शामिल है, वरासत का माल खा जाना किसी का, उसमें कत्ल शामिल है, उसमें जना शामिल है। ठीक है, तो ये कबीरा गुनाह है, ये आपके सारी नेकियों को खा सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर आपने सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ पढ़ के कोई 1 करोड़ नेकियां इकट्ठी की थी, और यतीम का माल खाते ही 1 करोड़ गुनाह आपके खाते में लिखे गए, नतीजा क्या निकला? हम माल नमा खाली हो गए। तो आपने सारी ज़िंदगी जो नमाज़ें पढ़ के, रोज़े रख के जो काम किया था, वो एक यतीम का माल खाने से बर्बाद हो गए। तो ये हुबन कबीरा होता है कि आपको इतने मनफी पॉइंट मिल गए कि सारे नेकियों को हड़प कर गया, सब ज़ाया हो गया। इसको हफ्ते माल भी कुरान ने कहा है, इसको ये भी कहा है कि नेकियां सैयाद को ले जाती हैं और सैयाद नेकियों को खा जाती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में फरमाया है कि हसद नेकियों को ऐसे खाता है जैसे आग लकड़ी को। ठीक है, तो मतलब क्या है? हसद एक बुराई है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अजीब बात है कि लोग समझते हैं कि हसद करने वाला तो कुछ नहीं है, जिससे हसद किया जा रहा है उसको नुकसान होता है। नहीं, उसको कुछ भी नहीं होता। हाँ, सिवाय इसके कि वो अमली तौर पर कुछ करने का जो मारे, गुलाब टांग तोड़ने की कोशिश करे, कोई लेग पुलिंग करने की कोशिश करे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसके हसद से, जिससे हसद किया जा रहा है उसको कुछ नहीं होता। हसद के लिए गुनाह हो रहा होता है, वो अपने खाते में गुनाह लिखवा रहा है, उसको नुकसान है, उसकी नेकियाँ खाई जा रही हैं, ना कि उसको मसला पैदा हो रहा है जो जिससे हसद हो रहा है। तो गुनाह कबीरा वाजे हो गया, यतीमों की अहमियत वाजे हो गई, उनका माल खाने का मामला वाजे हो गया। एक ज़बरदस्त तमहीद के बाद यतीमों का मसले को उठाया है। वाइन खिफ तुम अल्लाह तुक्सतु फिल यतामा फन केहू मा ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा फाइन खिफ तुम अल्लाह तादिलु फवाहिदा औ मा मलकत ऐमानुकुम ज़ालिका अदना अल्लाह तऊलू। अगर तुम्हें ये हो कि तुम यतीमों के मामले में इंसाफ नहीं कर सकोगे तो ज़ाहिर है कि यतीमों को बेआसरा तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो फरमाया कि फिर उनकी जो बेवा माएँ हैं उनसे शादी कर लो ताकि वो उनके माल का हिसाब किताब रख सकें, आपको खाने ना दें। उनकी माँ घर में है, वो आपका हिसाब किताब खुद संभाल लेगी। तो फरमाया कि अगर तुम्हें ये अंदेशा हो कि तुम मदद नहीं कर सकते यतीमों के मामले में, तो फिर जो इन औरतों में से जो उनकी माएँ हैं, बेवा औरतें हैं, उनसे शादी कर लो जो तुम्हें साजगार लगें। दो भी कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो, चार तक कर सकते हो। फाइन खिफ तुम, और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम अदल नहीं कर सकोगे तो फिर एक ही रखो, या गुलाम औरत से शादी कर लो। ये ज़्यादा करीब है कि तुम अदल से महरूम ना रह जाओ। यह आयत काफ़ी मुश्किल रही है क्योंकि यतीमों के मसले में समझ नहीं आता कि अल्लाह ताला शादियों की बात क्यों कर रहे हैं। तो जो मैंने तफसीर की है ये मेरे उस्ताद की तफसीर है और मुझे इस पर इत्मीनान है कि क्योंकि यतीम जो होता है वो मेरी आपकी उम्र का नहीं होता, बच्चे होते हैं, तो उनसे शादी कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर लफ्ज़ अन्निसा बोला गया है, अन्निसा का लफ्ज़ जो है वो बच्चियों के लिए नहीं बोला जा सकता। तो अब मसला पैदा हुआ कि फिर मतलब क्या है। तो उन्होंने ये हल निकाला है उस्ताद ने कि अन्निसा से मुराद इन यतीमों की माएँ हैं। तो जब शादी करेंगे यतीम बच्चे की माँ से तो वो घर में आ जाएगी, बच्चे के यतीम का देखभाल भी कर लेगी ज़्यादा बेहतर तरीके से, और शोहर को जो सुतेला बाप अब बन गया है उसको यतीम बच्चे का माल खाने से रोक लेगी, उसको बच्चे पर जुल्म ज़्यादती करने से रोक लेगी। तो ये अल्लाह ताला ने एक हल तजवीज़ किया, इस हल में एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त दी। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह ताला एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त खुली नहीं दे रहे हैं कि जो चाहे दो दो तीन तीन शादियां कर ले, ये खुली इजाज़त नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक समाजी मसले को हल करने के लिए इजाज़त दे रहे हैं। अगर अल्लाह ताला ने एक से ज़्यादा शादियों का रवाज देना होता तो बाबा आदम के लिए दो तीन महुआ पैदा करते, एक ही पैदा की थी, ताकि क्योंकि जो एक मियां बीवी का आपस में मामला है वही बेहतरीन घराने का तसव्वुर है। इसलिए नहीं कि मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहता हूँ और यहाँ पर एक ही बीवी के साथ हम गुजारा करते हैं तो अच्छा ख़ानदान बनता है, नहीं। उसकी वजह तकसीम है कई पहलुओं से इंसान की, जज्बात के पहलू से, एहसासात के पहलू से, तो वो उसको अल्लाह ताला रोकना चाहते हैं। तो असल में एक ही शादी होती है, लेकिन किसी सोसाइटी के मसले से, किसी और मसले से, समाजी नफ्सियाती हो सकता है, उसके हल के लिए अल्लाह ताला ने एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त दी। दूसरा मसला इसमें यह है कि मसना व सुलासा व रुबा चार से ज़्यादा नहीं हो सकती। आजकल कुछ लोगों ने सवाल उठा दिया कि अल्लाह ताला ने कहा दो दो तीन तीन चार चार कर लो, तो इसका मतलब पाँच पाँच छः छः भी हो सकते हैं। तो ये याद रखिए कि ज़ुबान का असलूब ये है कि जब तीन अदद बयान किए जाएं, दो बयान किए जाएं तो तहदीद हो जाती है। जब दो अदद बयान किए जाएं, मसलन मिसाल के तौर पर यहाँ टॉफियाँ पड़ी हों तो मैं आपको भी जितनी चाहे ले लें, ये एक ही असलूब है। मैं कहूँ भी एक एक ले लो तो पाबंदी है कि नहीं है। मैं कहूँ एक एक दो दो तीन तीन ले सकते हैं, अभी पाबंदी है। मैं कहूँ दो दो तीन तीन चार चार तो ये पाबंदी है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप। तो जब भी हम अदद बता देते हैं किसी चीज़ में, तो दोहराएं, दो बना दें, तीन बना दें, एक बना दें, पाबंदी लग जाती है। तो जब मैं कहूँ दो दो ले लें, आप दो दो ही ले सकते हैं। मैं कहूँ तीन तीन ले लें, तीन तीन ले, मैं कहूँ दो दो तीन तीन चार चार ले लें, ठीक है, अब पाबंदी लग गई, ये बढ़ेगा नहीं। बढ़ने के लिए जुमला ये होना चाहिए कि जितनी चाहें शादियाँ कर लो, फिर ये जुमला बोला जाएगा। इसका ज़ुबान के तरीका ही होता है कि अपनी ज़ुबान में उस तरह के जुमले बनाकर सोचे तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये याद रखिए कि ज़ुबानों के अंदर वोकैबुलरी और ग्रामर का थोड़ा सा फ़र्क होता है, वगरना पीछे चलने वाली नफ्सियात एक होती है, तमाम ज़ुबानों की पीछे नफ्सियात इंसान ही की है। तो जिस तरह हम दूसरी कौमों के तहजीब को समझ पाते हैं, ऐसे ही ज़ुबान समझ पाते हैं, तो वो नफ्सियात पीछे एक ही चल रही होती है। ज़ुबानों की रियाजी एक ही है हर जगह पे। फ़ाइन खिफ़्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा, अब फरमाया कि अगर तुम्हें ये ख्याल हो कि तुम अदल नहीं कर सकोगे तो फिर एक ही से करना, और या ग़ुलाम औरतों से शादी कर ले। ग़ुलाम औरतों का मसला उस वक्त ये सहूलत थी कि आप एक ग़ुलाम औरत को आज़ाद भी करवाते हैं तो ठीक है, अब आज़ाद औरत के साथ आपने निकाह कर लिया तो उसके वो ज़िम्मेदारियाँ भी नहीं होती, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े लेकर देने की ज़रूरत नहीं है, तो ख़र्चे कम हो जाते हैं, इसलिए अल्लाह ताला इसको फरमा रहे हैं कि, और जब ये आयतें उतरी हैं तो अभी ग़ुलामी का खात्मा भी नहीं हुआ था, यानी कुरान के अमर हुक्म के अतबार से तो ये उससे पहले आयतें नाजिल हुई हैं। तो अगर अल्लाह ताला यहाँ औ मामलकत का लफ्ज़ ना बोलते तो सारे सहाबा अपनी इन बेगमात को तलाक देने पर मजबूर हो जाते, तो वो अभी अल्लाह ताला इसको कायम रखना चाहते हैं। ये याद रखिए कि मिलके यमीन का जो तसव्वुर है वो निकाह ही का एक मुतबादल सूरत है। जब एक आदमी किसी खातून को ख़रीद लाता था बाज़ार से तो वो बीवी के तौर पर उसकी मलकियत होती थी, ये कोई गैर कानूनी ताल्लुक नहीं होता था। निकाह पढ़ने में और ख़रीद लेने में एक ही जैसा अमल समझा जाता था, ये वाज़ेह रहना चाहिए। तो लीगल हक हासिल था ख़रीदार को कि वो उसकी बीवी है। अब चूँकि अल्लाह ताला ने ग़ुलामी का ख़ात्मा कर दिया है, अब ये हक किसी को नहीं मिलता, लेकिन कदीम ज़माने में बाज़ार से लोग दो वजह से ग़ुलाम ख़रीद के लाते थे, काम करवाने के लिए या बीवी के तौर पर। तो जो बीवी के तौर पर ख़रीद के लाते थे वो उसको बीवी के तौर पर ही ट्रीट करते थे। तो फरमाया कि तुम एक से रखो या अपनी ग़ुलाम जो बीवी है उसके साथ निकाह कायम रखो, ठीक है, ये ज़्यादा करीब है कि तुम अदल पर कायम रहो। तो अदल पर कायम रहना जो है वो अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है। तो अब देखिए कि यहाँ पर अदल उसी अखलाक की तरफ इशारा कर रहा है कि हमारे दीन की तमाम चीज़ों की बुनियाद अखलाकियात पे है। हम यहाँ रोक लेते हैं।